की हो, जब चले शहर की हो।
दोस्तों, जब चले शहर की ओर के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड है पीने की बुरी आदत के बारे में।
और इत्तेफाक की बात है नरेन के, आज सुबह ही मैंने इसके परिणाम खुद देखे हैं।
वो कैसे?
जब मैं स्टूडियो आ रही थी ना, एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा किनारे की बिल्डिंग को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। और जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो,
तो उसने क्या कहा?
कि बिल्डिंग हिल रही है और उस पर गिर जाएगी। जबकि झूम तो वो खुद रहा था नरेन, आसपास खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे।
सही कहा अंजलि, नशा करने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है, और वो अपनी सेहत तो बर्बाद करता ही है, कई बार अपने घर और परिवार की बर्बादी का कारण भी बन जाता है।
अब हमारे धारावाहिक शहर की ओर में हरिंदर की हालत भी कुछ ऐसी ही है। वैसे नरेन, कहानी में आगे क्या चल रहा है?
लो अभी सुनते हैं हमारा साप्ताहिक धारावाहिक शहर की ओर।
मीरा, ओ मीरा,
हे भगवान, इस घर में तो सबके सवाल सी हो गए हैं। कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, सबको अपनी अपनी चिंता है। किसी को इतनी फिक्र तक नहीं है कि आज सुबह से गाय को घास भी डाली है या नहीं।
माची, दीदी तो कमरे में है, कोई काम है तो मुझे बता दीजिए।
काम क्या मधु, अब देख ले गाय सुबह से भूखी है, और एक वो है जो शायद सुबह से गाय को घास डालना ही भूल गई। बेटी तो जाके जरा जंगल से घास ले आ और गाय को डाल दे।
जी माँ जी।
बौजी आप रहने दीजिए, घास मैं ले आती हूँ।
नहीं छुटकी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन कामों से ज्यादा जरूरी तुम्हारा स्कूल जाना है।
अरे बौजी, पढ़ लिख कर कौन सा मुझे कलेक्टर बनना है, बाद में वही खेत ही तो काटने हैं सबकी तरह।
अभी तुम्हें पढ़ाई की अहमियत का अंदाजा नहीं है। इस बात का अंदाजा तो वही लगा सकता है जो पढ़ना चाहता और उसे पढ़ने का मौका ना दिया गया हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम स्कूल जाती हो।
क्या बौजी, अब आप भी पढ़ाई की बातें करने लग गई। नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल।
चुटकी, तुम स्कूल जाओगी समझी, तुम जाओ स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, और हाँ साथ में नकुल और नैना को भी तैयार कर दो स्कूल के लिए।
ठीक है, जाती हूँ।
चंदर, अरे ओ चंदर।
अरे उमेश बेटा, तू?
अरे बड़ी नमस्ते।
नमस्ते बेटा, और सब ठीक है ना घर में?
हाँ बड़ी, सब बढ़िया चल रहा है। बड़ी, ये चंदर नजर नहीं आ रहा है, कहीं बाहर गया है क्या?
ये ले, आ गया चंदर। अब तुम दोनों बैठकर बातचीत करो, मैं चाय भिजवाती हूँ।
और उमेश, क्या हाल है भाई, कैसे याद आ गई मेरी?
बस ऐसे ही, अब तूने तो शादी के बाद शक्ल ही दिखाना बंद कर दिया, तो हमने सोचा हम ही कुछ खैर खबर ले लें।
अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है।
और सुना, क्या हाल है तेरे? हमारी भाभी कैसी है?
मैं भी बढ़िया हूँ और तेरी भाभी भी ठीक है।
तो फिर मिलवाएगा नहीं भाभी से?
जरूर मिलवाऊंगा, पर अभी वो जंगल से घास लेने गई है।
चल भाई, अब तेरी मर्जी है, अगर भाभी के हाथ की चाय नहीं पिलवाना चाहता तो मत पिलवा।
अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अच्छा उमेश, वो जो कच्ची सड़क जा रही थी जो आगे जाकर पक्के रास्ते से मिल जाती है,
हाँ
सुना है उसका काम चालू हो गया?
हाँ सुना तो मैंने भी है, जब मैं लौट रहा था तब भी शायद उस पर काम चल रहा था।
यार उमेश, मैं सोच रहा हूँ कि अगर उस पर कुछ काम मिल जाए तो।
अब ये तो वहीं चलकर पता चल सकता है ना।
चल तो फिर चलकर पता करते हैं, क्या पता कुछ बात बन जाए।
चल।
अरे उमेश, अरे बेटा चाय तो पी जा।
अरे बड़ी, चाय फिर कभी पियेंगे।
अरे जल्दी जल्दी काम करो, हमें सड़क का काम 6 महीने में ही पूरा करना है। सब के सब काम चोर हैं।
ठेकेदार साहब।
अरे सीमेंट के कट्टे उठाकर उस तरफ गोदाम में ले जाओ।
ठेकेदार साहब।
अभी और भी माल आने वाला है, उसे ट्रक में से उतरवा लेना।
ठेकेदार साहब।
हाँ भाई बोल, अब क्या काम है?
जी मैं ये कह रहा था कि अब ये सड़क का काम कितने दिनों तक चलेगा?
कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे।
तो क्या तब तक हमें यहाँ कुछ काम मिल सकता है?
काम करना चाहते हो?
जी।
कैसा काम करना चाहते हो?
जी कोई भी चलेगा, कोई भी।
अच्छा क्या नाम तेरा?
जी चंदर।
चंदर क्या किया हुआ है तूने?
जी
मेरा मतलब पढ़ाई कहाँ तक की है?
जी 10वीं तक।
ओ, अगर तू 2 दिन पहले मेरे पास आया होता तो तुझे एक नौकरी दे सकता था। अभी परसों ही मैंने एक नए लड़के को सुपरवाइजरी के लिए रखा है।
जी क्या कोई और जगह खाली नहीं है?
अभी तो बस मजदूर चाहिए। अगर करना चाहते हो तो भले ही कल से शुरू कर दो।
जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल से।
चंदर पागल हो गया है क्या? तू मजदूरी करेगा? अरे तू 10वीं तक पढ़ा लिखा है और शहर में तो 10वीं पास को भी अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाती है।
उमेश मुझे काम की ज़रूरत है और अब जब मुझे यहाँ काम मिल रहा है तो तू मना कर रहा है?
मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ तू मजदूरी ना करके मेरे साथ शहर चल, वहाँ कई अच्छी नौकरियाँ तेरा इंतज़ार कर रही हैं।
पर यार इतनी जल्दी शहर? वैसे भी अभी तो शादी हुई है, मधु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी मैं उसे अभी इतनी जल्दी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता।
अरे वो अकेली कहाँ है, घर पर पूरा परिवार है उसके लिए।
नहीं उमेश, फिर भी अभी कुछ वक्त तक तो मैं शहर नहीं जा सकता, मुझे कुछ दिन रुकना होगा, पर समझ में नहीं आता तब तक क्या करूं।
तो फिर एक काम कर, जब तक तू शहर नहीं जाता तब तक गांव में ही परचून की दुकान खोल ले, उसमें भी फायदा है, लेकिन मजदूरी ये मुझे ठीक नहीं लगता यार।
यार शायद तू सही कहता है, मैं आज ही इस बारे में माँ से बात करता हूँ।
टिकेट, टिकेट लेला, टिकेट।
हाँ लेती हूँ, एक मिनट। माया, माया यहाँ मुंबई में? माया,
अरे कविता तू यहाँ?
हाँ। अच्छा तू एक मिनट वहीं रुक, मैं वहीं आती हूँ, देख तेरे बगल में सीट खाली है। भैया जरा साइड देना प्लीज। हाँ अब बता तू कैसी है?
मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तू सुना?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तू यहाँ मुंबई में क्या कर रही है? तेरी शादी तो वहाँ दिल्ली में
हुई थी, पर अब उनका ट्रांसफर यहाँ मुंबई में ही हो गया है।
ओहो।
और सुना गांव की, घर की कुछ खबर?
घर घर की खबर मिले तो बहुत समय हो गया माया।
मैडम आपका टिकट।
हाँ भैया जरा 2 कुरला की देना।
ये लो मैडम, और ये खुले पैसे। हाँ भैया आपका टिकट।
ओहो मैं भी क्या बात लेकर बैठ गई। अच्छा सुन, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ।
अच्छा,
अगर तुझे कुछ भिजवाना है तो भिजवा सकती है।
हाँ माया भिजवाना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, और वैसे भी मैंने छोटे भाई और बहन के लिए कुछ कपड़े खरीद रखे हैं, सोचती हूँ घर वालों के लिए कुछ पैसे भी भेज दूँ, पर क्या वो मेरे भेजे पैसे और कपड़ों को स्वीकारेंगे? अब तुझे तो सब पता है वो मुझसे कितने नाराज हैं।
कोई बात नहीं, तू तो परेशान हो गई, मैं बस इतना कह रही थी कि मैं गांव जा रही हूँ और अगर तुझे घर वालों के लिए कुछ भिजवाना है तो तू मुझे दे दे, मैं उन्हें पहुँचा दूंगी।
लेकिन माया क्या वो मेरी भेजी चीज़ें लेंगे?
अरे कविता तू दिल छोटा मत कर, और इसकी भी फिक्र मत कर कि मुझे उन्हें तेरा सामान किस तरह से देना है, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें दे ही दूंगी।
कुरला कुरला, उतरा उतरा उतरा।
चल चल स्टैंड आ गया।
हाँ चल।
क्या हुआ, भूख लगी है लक्ष्मी को? ले देख मैं तेरे लिए हरी हरी और ताजी घास लेकर आई हूँ।
मधु मधु।
आई आई माँ जी।
अरे मधु ये मीरा सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर खेतों पर गई है क्या?
पता नहीं माँ जी, मैंने भी सुबह से दीदी को नहीं देखा।
अच्छा 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 सुन वो बैंगन दे जा, मैं बैठी बैठी दोपहर के खाने के लिए काट देती हूँ।
अभी लाई।
और सुन जरा पीने के लिए एक गिलास पानी तो ले आ।
जी माँ जी। दीदी क्या हुआ?
कुछ नहीं।
क्या बात है दीदी, आप रो क्यों रही हैं?
वो कल रात से घर नहीं आए हैं।
कौन, जेठा जी?
हाँ।
पर रात को उन्होंने तुम्हें बुलाया था ना?
हाँ रात को छोटी सी बात को लेकर झगड़ पड़े और पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक नहीं लौटे हैं। मधु मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे।
आप फिक्र मत करो दीदी, जेठा जी लौट आएंगे।
अरे मधु।
आई माँ जी। दीदी अब रुको मैं पानी देकर आती हूँ। जेठा जी
संभाल के भाईजी, संभाल के।
हरिंदर, अरे इसे क्या हुआ है? और ये चंदर क्यों उसे पकड़ के ला रहा है?
अरे मधु, जरा चारपाई बिछाना।
जी अभी लाई।
अरे बताएगा भी कि क्या हुआ इसे?
कुछ नहीं माँ, बाहर पड़े थे सड़क के एक तरफ, वो भी नशे में धुत।
हे भगवान, इन्हें इधर लिटा दीजिए।
इसकी ये पीने की आदत कब छूटेगी? अरे इसे तो अपना होश भी नहीं है। मीरा, जरा पानी लाना।
लाई माँ जी।
क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये नहीं क्या हुआ? भगवान के लिए आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए।
भौजी कुछ नहीं हुआ इन्हें, बस ज्यादा पीने की वजह से बेहोश हो गए हैं।
तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, और अंजलि सुना तुमने, नशा एक इंसान की क्या हालत कर सकता है।
बिल्कुल नरेन, लेकिन जैसा कि एक कहावत है ना, सूरज अस्त पहाड़ी मस्त, तो कुछ लोग इसी पर अमल करते हुए पीने को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वैसे नरेन, आखिर वजह क्या है इसकी, क्यों वो इतना ज्यादा पीना पसंद करते हैं?
अंजलि, अब ये सब बातें तो हमें लोगों से बात करने पर ही पता चलेंगी कि आखिर क्यों वो इस पीने की आदत को अपनाते हैं। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर सुनते हैं कि हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने किन लोगों से बात की।
आपको क्या लगता है कि पहाड़ों में लोग इतना क्यों पीते हैं?
पहाड़ों में पीने का मेन कारण है कि वहाँ पे आर्मी के बंदा ज्यादा हैं, जिससे कि वो ठेका नहीं हुए गांव में तब भी इतनी मिलती कि जितनी ठेके में नहीं रहती। उससे लोग अपना तो पीते पीते हैं, गांव वाले 200-200 रुपए करके बोतल भी लेते हैं उनमें से। फिर जिनके पास नहीं होती वो कच्ची पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव में के जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अब दिहाड़ी मजदूरी करने वाला 200 की बोतल तो खरीदेगा नहीं, इसलिए वो कच्ची लेके 20 रुपए की बोतल मिल जाती है, 40 रुपए का जैरकिन में फर्स्ट की वो मिल जाती है, उसे पी लेते हैं, उससे पी के अपना एंजॉय भी हो जाता है।
पहाड़ों में लोग ठंडे होने के कारण पीते हैं, और दूसरा है वहाँ पर लोग खुद बनाते हैं, इसलिए वहाँ ज्यादा मात्रा में मिलती है।
सबसे पहली बात तो यह है कि पहाड़ों में 25% घरों में मदिरा बनती है, जो कि सस्ते रेट पर उपलब्ध हो जाती है, खरीदने में सक्षम होता है।
पहाड़ी लोगों का ज़्यादा पीने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे विचार में पहाड़ी लोग इसलिए ज़्यादा पीते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, दूसरा फौज में ज़्यादा होते हैं, या अकेलापन भी एक कारण हो सकता है। इनमें से तीनों भी हो सकते हैं या एक भी नहीं, क्योंकि पीने वाले लोगों को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है, वो कोई भी हो सकता है।
पहाड़ों में लोग इतने इसलिए पीते हैं क्योंकि वो दिन रात अपने काम करके थक जाते हैं, मजदूरी करते हैं दिन रात, पहाड़ों पे काम करते हैं, सड़ी धूप में काम करते हैं, इसलिए वो अपने शाम को थकान दूर करने के लिए पीते हैं, एक कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है कि उनको चाहिए ही चाहिए, उनको बिना पिए वो रह नहीं सकते।
मेरा दाजू खेलनी तास, मेरा बाबू पी शराब, मेरा दाजू खेलनी तास, मेरा बाप भी शराब, ओ लोगो टक डबल जेबन हाली घूमनी बाजार मा, ओ लोगो टक डबल जेबन हाली घूमनी बाजार मा, मेरा दाजू खेलनी दास, मेरा बाप भी शराब, मेरा दाजू खेलनी दास, मेरा बाप भी शराब, ओ लोगो टक डबल जेबन हाली बाजार मा, ओ लोगो टक डबल जेबन हाली घूमनी बाजार मा, ओ लोगो टक डबल जेबन हाली घूमनी बाजार मा।
तो सुना आपने कि पीने के बारे में कैसे लोगों के अलग अलग विचार हैं।
दोस्तों, पीने के फायदों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इसके असर कितने बुरे हैं, इसके बारे में जानते हैं हमारे आज के डॉक्टर से।
हमारे अगले सेगमेंट कुछ विश्वास में।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतुल प्रियदर्शी है और मैं एक जनरल फिजिशियन और हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ।
डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि उसे पीने की लत लग गई है?
जी, जब एक इंसान जिसके लिए पीना इतना जरूरी हो जाता है कि बिना पिए वो अपनी रोजमर्रे की दिनचर्या ठीक से नहीं निभा पाता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि उसको पीने की लत लग गई है। मदिरा पान के स्वास्थ्य पर बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे मरीज की चिंतन शक्ति, उसकी याददाश्त के कमज़ोर होने से लेकर उसके शरीर में जो आवश्यक तत्वों विटामिन्स की कमी से लेकर, जो मरीज़ बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय तक पीते हैं उनको शुरुआत में पीलिया हो सकता है और बाद में उनका जिगर बुरी तरह से सड़ सकता है। इसके अलावा उनके पेट में सूजन की शिकायत हो सकती है, खून बह सकता है। इसके अलावा उनको पेट का, गर्दन का या दिमाग का कैंसर होने की संभावनाएं हो सकती हैं।
अगर कोई व्यक्ति इस आदत को छोड़ना चाहता है तो वो कहाँ जाए, क्या करे?
मदिरा पान से ग्रसित लोगों को मदिरा पान से छुटकारा दिलाने के लिए अलग से डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं। डी एडिक्शन सेंटर्स में आउटडोर बेसिस और इनडोर बेसिस दोनों पे काम होता है। जो मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस कैटेगरी में नहीं आते उनको आउटडोर बेसिस पर ही इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, या जो मरीज बहुत ज़्यादा ग्रसित है उसको भर्ती करके उसका इलाज किया जाता है। इस इलाज के जो अलग अलग तरीके होते हैं उसमें सबसे पहला तरीका होता है मरीज को, उसके घर वालों को या उसके निकटतम दोस्तों को मदिरा पान के बारे में बताना, और साथ साथ मरीज को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना कि वो मदिरा पान छोड़े। किस तरह की परिस्थितियों में उसको दोबारा मदिरा पान की लत लग सकती है, जैसे कोई पारिवारिक समस्या या कोई आर्थिक समस्या, उनको उन स्थितियों से जूझने के लिए मोटिवेट किया जाता है। साथ साथ मरीज को जो मदिरा पान की वजह से उसके शरीर पर दुष्प्रभाव आए हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावे लोगों का ग्रुप बना के जो इस तरह के मरीज हैं उन सबों को एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार किया जाना, या फिर आजकल तो कुछ दवाइयां भी इस्तेमाल की जा रही हैं जो इस तरह के मदिरा पान से ग्रसित लोगों को इस बीमारी से छुटकारा दिलाने की कोशिश की जाती है।
तो दोस्तों, अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना कि पीना कितना खतरनाक साबित हो सकता है सेहत के लिए। अच्छा नरेन, एक बात बताओ।
हाँ, पूछो।
किसी इंसान को पता कैसे चलता है कि वो पीने का आदी होता जा रहा है?
अंजलि, तुम तो ये सवाल मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं रोजाना ही पीता हूँ।
नहीं, वो बात नहीं है। देखो, लोग पीने की शुरुआत करते हैं शौक से और धीरे धीरे उनका ये पीने का शौक उनकी आदत बन जाता है।
हाँ।
उन्हें लगने लगता है कि ये उनकी जरूरत बन गई है। तो शौक से आदत बनने के बीच क्या लक्षण होते हैं?
अंजलि, इस बात को भैजी से पूछना तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अनुभवी भी है और उन्होंने लोगों के अनुभव को जाना भी है।
तो ठीक है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नरेन। नमस्कार अंजलि।
नमस्कार भैजी।
भैजी, आज हम एक ऐसे प्रश्न में उलझ गए हैं जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है।
अच्छा,
देखिए भैजी, मुझे पीने वाले लोगों के बारे में ये तो मालूम है कि वो पीने के बाद किस तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन इस बात का लोगों को पता कैसे चल सकता है कि उनका पीने का शौक उनकी आदत बनता जा रहा है?
नरेन, तुमने बहुत सही सवाल किया है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले एक जोक सुनाना चाहूंगा।
जी भैजी, सुनाइए।
एक बार एक आदमी होता है जो रोज पीता है और हर बार एक नए बहाने के साथ पीता है।
अच्छा।
कभी कहता है दोस्त की शादी है, कभी कहता है बेटे का जन्मदिन है। तो एक दिन उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती है, बड़े प्यार से समझाती है, तो वो मान जाता है कि आगे से बाय गॉड की कसम कभी नहीं पिएगा। लेकिन शाम को जब घर वापस आता है तो फिर पीकर आता है।
अरे?
तो पत्नी कहती है कि आपने तो सुबह वादा किया था कि आप कभी नहीं पियोगे। तो पति कहता है, हाँ कहा था ना, और पीना छोड़ भी दिया। पत्नी कहती है, तो फिर आज क्यों पीकर आए हो? तो जानते हो पति क्या कहता है?
क्या भैजी?
कहता है, आज तो छोड़ने की खुशी में पिए। अंजलि, तो क्या समझ में आया इस जोक से?
यही भैजी, के पीना अब उसकी आदत बन गया था, वो बार बार पीता था और हर बार उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए था।
बिल्कुल सही। अब रही बात कि लोगों को कैसे पता चले कि ये उनका शौक उनकी आदत में तब्दील हो रहा है, तो सुनिए, जब आप बिना पिए खा नहीं सकते, सो नहीं सकते या फिर सोच भी नहीं सकते, तो मेरे दोस्त जान जाइए कि पीने की आदत ने आपको घेर लिया है। और इसके अलावा जब लोग अपनी इस आदत के बारे में खुद से झूठ बोलने लगे,
अच्छा,
खुद को ये कहने लगे कि इस बार आखिरी बार है, आगे फिर कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन आगे फिर पीते हैं, फिर पीते हैं, फिर पीते हैं, तो ये उनकी आदत बनती जा रही है।
जी।
तो ये सब बातें हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप पीने के आदि हो गए हैं।
जी।
और आखिर में नरेन और अंजलि
जी,
चार पंक्तियां पेश है।
जी जी, इरशाद।
आहा, इस पीने की आदत पर करो विचार, ये बना देती है आपको लाचार। तन भी बीमार, इससे मन भी बीमार, फायदे कम, इसके नुकसान हजार।
क्या बात है?
और सुन लीजिए, इस पीने की आदत पर सब मिलकर करो विचार, ये बना देती है हर शख्स को लाचार।
वाह वाह भाई जी, वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया।
बहुत खूब कहा भैजी आपने। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे पीने के आदि होते चले जाते हैं। और भैजी, हमारे दोस्तों को ये सब जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है भाई, अब हमें जाना है, गाड़ी पकड़नी है निजामुद्दीन से।
अच्छा। तो नरेन, आज काम की बात में क्या है काम का? क्या जो लोग पीना छोड़ना चाहते हैं, उनकी हम कुछ मदद कर सकते हैं?
बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पीने की आदत से पीछा नहीं छुड़ा सकते, बस जरूरत है तो हिम्मत की और समझ बूझ की।
जी हाँ, क्योंकि हमारे देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो कि नशा मुक्ति पर ही काम कर रही हैं, साथ साथ ऐसे अस्पताल भी हैं जो नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हुए हैं।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डी एडिक्शन सेंटर से। वहाँ का फोन नंबर है 011-23-40-4262, यानी 011-23-40-4262।
अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं कृपा फाउंडेशन के डी एडिक्शन सेंटर से। वहाँ का पता है माउंट कामिल चर्च, 81/A चैपल रोड, बांद्रा, मुंबई। आप चाहें तो वहाँ फोन भी कर सकते हैं। वहाँ का फोन नंबर है 022-26-40-5411, यानी 022-26-40-5411।
और अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आप निजात संस्था से संपर्क कर सकते हैं। वहां का पता है 37B आमबाग, गड़ी कैंट, देहरादून 248003, और वहां का फोन नंबर है 01352750129 और 6533706। फोन नंबर से एक बार फिर से नोट कर लें, 01352750129 और 6533706।
और अगर आप कोई और सवाल भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें उसके लिए हमारे नंबर 9197176782 यानी 9197176782 पर हमें SMS कर सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में यही थी काम की बात जो कि हम आपको बताना चाहते थे। और अब हम और आप सुनेंगे एक गढ़वाली गाना।
ते विद्या बातों की रख रखाली हमारा पहाड़ माँ, देवी देवतों की रख रखाली हमारा पहाड़ माँ, रसीली जड़ी बटाली हमारा पहाड़ माँ, देवी देवतों की रख रखाली हमारा पहाड़ माँ, गंगा जमुना रसीली हमारा पहाड़ माँ, देवी देवतों की रख रखवाली हमारा पहाड़ माँ, अल्लू गोभी खूब उगाने हमारा पहाड़ माँ, नजी बाबा देखी गोभी निखाड़ हमारा पहाड़ माँ, युवा बेबंदो ख्याल रखाण हमारा पहाड़ माँ, युवा बेबंदो ख्याल रखाण हमारा पहाड़ माँ, गाँव गाँव में हरियाली ल्याण हमारा पहाड़ माँ, अपूरो पण जंगल बचाण हमारा पहाड़ माँ, अपूरो पण जंगल बचाण हमारा पहाड़ माँ, निखे हमारा बाड़मा जिंदगी को नुनास हमारा बाड़मा बेबंदो शराब निपेण हमारा बाड़मा अपनी पेड़ हर निदेण हमारा बाड़मा अपनी पेड़ हर निदेण हमारा अपनी संस्कृति बचाण हमारा बाड़मा भला भला गीत लगाण हमारा बाड़मा देवी देवतों की रख रखवाली हमारा बाड़मा रसीली बोटली डाली हमारा बाड़मा।
और अब सुनते हैं आज के संदेश जो हमारे दोस्तों ने हमारे कार्यक्रम के जरिए अपने परिवार के लिए भेजे हैं।
हमारे अगले सेगमेंट संदेश में।
मेरा नाम किशन है, मैं अपने पापा को रेडियो द्वारा संदेश भेज रहा हूँ। मेरे पापा का नाम श्री लक्ष्मी नारायण है, वो रानीखेत में रहते हैं। पापा हम यहाँ पर ठीक ठाक हैं, हमारी चिंता मत करना, तुम्हारी बहू भी ठीक ठाक है। और पापा अपनी तबीयत के बारे में ख्याल रखना, धूप में ज़्यादा दौड़ भाग मत करना, बैलों को मत बेचना, जब मैं घर आऊँगा खुद बेचूँगा। बाकी गाँव में सबको मेरी तरफ से नमस्ते कह देना।
मैं दिल्ली मीठापुर से बोल रही हूँ, मुझे पौड़ी गढ़वाल पटवटिया गांव में मेरी मम्मी के लिए ये मैसेज है। मम्मी नमस्ते, मैं मनीता बोल रही हूँ और हम लोग सब ठीक हैं। आशा करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे। और गर्मी बहुत हो रही है, भैया की नौकरी भी नहीं लगी, आपकी बहुत याद आ रही है। मेरे ससुराल भी जाते रहना और उनके हाल समाचार भी हमारे लिए भेजते रहना।
मैं दिल्ली मेठापुर से बोल रही हूँ, ये मैसेज पौड़ी गढ़वाल ग्राम खेतो मेरी मम्मी के लिए है। हेलो माँ जी नमस्ते, मैं शांति बुनो छो, हम सब यक ठीक ठाक छवा, भगवान से प्रार्थना कर दा कि तुम भी सब ठीक ठाक होला, पर हमार कोई चिंता फिकर नहीं कर। माँ जी अभी एक गर्मी बहुत ज्यादा छी, पिताजी ख्याल भी रखी, आप ख्याल भी रखी और घर सबको मेरी तरफ से नमस्ते बोल दे।
तो ये थे वो संदेश जो हमारे उन श्रोताओं ने अपने परिवारों के लिए भेजे थे जो अपने परिवारों से दूर रहकर शहरों में नौकरी कर रहे हैं। अगर आप भी अपना कोई संदेश हमारे प्रोग्राम जब चले शहर की ओर के जरिए अपने परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम और पता एसएमएस कर सकते हैं। फोन नंबर है हमारा 9197176782 यानी 9197176782। और हाँ, हमारे सामुदायिक संवाददाता आपके पास आएंगे और हम उन संदेशों को रिकॉर्ड करके अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
तो दोस्तों, अब तक आप सुन रहे थे आपका अपना प्रोग्राम जब चले शहर की ओर। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और इसके लिए हम अपने सहयोगियों मंदाकिनी की आवाज, हेवलवाणी और दिल्ली और मुंबई के हमारे सारे सामुदायिक संवाददाताओं के भी आभारी हैं।
और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। तो दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा और अगर आप में से भी कोई गांव से शहर आया है और अपने अनुभवों को हमारे साथ बांटना चाहता है तो हमें अपने नाम, पते और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जरूर लिख भेजिएगा, क्योंकि उन पत्रों को हमारे कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और पत्र भेजने वाले को दिया जाएगा एक आकर्षक इनाम। हमारा पता है,
कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 12103।
और एसएमएस के लिए हमारा नंबर एक बार फिर से नोट करें, 9197176782 यानी 9197176782। तो दोस्तों, अगले सप्ताह तक कीजिए हमारा इंतजार
और चिट्ठियों के जरिए भेजते रहिए अपना प्यार।
हम फिर मिलेंगे आपसे एक बार,
तब तक के लिए
नमस्कार।
जब चले शहर की ओर, जब चले शहर की।